और सम्यक चारित्र। ये मार्ग में भी होता है और मंजिल में भी होता है। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सत्य के प्रति पूर्णतः समर्पित जीवन, विश्वासपूर्ण जीवन, शंकारहित जीवन। और ज्ञान का अर्थ होता है उसी विश्वासपूर्ण जीवन के साथ साथ जीव के पास हे तत्व के प्रति हे बुद्धि, उपादेय तत्व के प्रति उपादेय बुद्धि होती है। यही सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, ये दोनों यदि ठीक हो गए, समीचीन रास्ते पर विद्यमान हैं, तो पंच पापों का त्याग करने के प्रति आसक्ति जो बढ़ती है, वह अपने आप में अपनी आत्मा को, अपने ज्ञानोपयोग को अपने स्वभाव में ठहराने के लिए, स्थिर बनाने के लिए उद्देश्य बना करके ही, इसी को उद्देश्य बना करके ही पंच पापों का त्याग होता है। पंच पापों का त्याग करना बहिरंग चारित्र है, और अपनी आत्मा की स्थिरता का नाम आत्मस्वरूप में स्थिर होते जाना, इसकी सीढ़ियाँ बनती हैं। अंतरंग चारित्र की बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। बहिरंग चारित्र, सकल चारित्र रूप पंच पाप त्याग रूप जो होता है, उसकी क्या सीढ़ी? एक ही सीढ़ी है, अपरिग्रह महाव्रत की ओर बढ़ गए तो बहिरंग चारित्र तो आ गया। बहिरंग परिग्रह त्यागने से बहिरंग चारित्र प्रकट होता है, और अंतरंग परिग्रह को त्यागने से अंतरंग चारित्र प्रकट होता जाता है। इसकी सीढ़ियाँ हैं। जैसे अनंत अनुबंधी चारित्र का घातक है, अप्रत्याख्यानावरणी चारित्र का घातक है, प्रत्याख्यानावरण भी सकल चारित्र का घातक है। अंतरंग भाव चारित्र के ये तीन कषायें, भाव चारित्र के घातक तीन कषायें, इनका अभाव होने से सकल चारित्र प्रकट होता है। तो इसमें आत्मा की स्थिरता आई क्या नहीं आई, ये प्रश्न उठाएंगे, तो आई है। तो आत्मा अनंतानुबंधी के साथ में भी थी, अप्रत्याख्यानावरणी कषाय के साथ में भी थी, प्रत्याख्यानावरणी कषाय के साथ में भी थी। इस समय आत्मा पाप के साथ थी, क्योंकि ये तीनों कषायें सर्वघाती हैं। सकल महाभाव महाव्रत को महाव्रत के विनाशक हैं, यानी इन तीन प्रकार के कषायों का क्षयोपशम होने पर क्षायोपशमिक चारित्र प्रकट होता है छठे सप्तम गुणस्थान में। ये क्षायोपशमिक चारित्र की उत्पत्ति छठे सप्तम गुणस्थान से प्रारंभ होकर श्रेणी चढ़ने के उपरांत यही क्षायोपशमिक चारित्र क्षायिक चारित्र का रूप ले लेता है। कौन सी श्रेणी? क्षायिक चारित्र के लिए क्षपक श्रेणी। क्षपक श्रेणी चढ़ने के उपरांत क्षायिक रूप लेता है। तो ये भी आत्मा की स्थिरता रूप चारित्र ही है। आत्मा के स्वभाव में स्थिरता आती जा रही है। नीचे की सीढ़ी में क्षायोपशमिक चारित्र के साथ आत्मा की स्थिरता थी, ऊपर की सीढ़ी में क्षायिक चारित्र के साथ आत्मा की स्थिरता है। और इसी को आगे बढ़ाएंगे तो चारित्र क्षायिक बने बिना ज्ञान को अपन क्षायिक नहीं बना सकते, ये नियम है। अपना जो ज्ञान है, ज्ञानोपयोग है, वह छद्मस्त का ज्ञानोपयोग है। अल्पज्ञ हैं अपन, केवल ज्ञानी तो नहीं है, सर्वज्ञ तो नहीं है, ये अल्पज्ञ ज्ञानोपयोग क्षायोपशमिक तब तक रहता है जब तक 12वें गुणस्थान को हम पार नहीं करेंगे, क्षायोपशमिक ज्ञान रहेगा। परंतु रास्ते में छठे सप्तम में तो क्षायोपशमिक चारित्र रहा, यदि उपशम चढ़ते हैं तो औपशमिक चारित्र प्रकट होता है, छपक श्रेणी चढ़ते हैं तो क्षायिक चारित्र प्रकट होता है, तो चारित्र की सीढ़ियां बन गई। ये तीन सीढ़ियां हैं। क्षायोपशम चारित्र के बिना औपशमिक चारित्र नहीं होगा और क्षायिक चारित्र भी नहीं होगा। सर्वप्रथम अपने को क्षायोपशमिक चारित्र ही प्रकट करना पड़ता है। कर लिया, अब किधर जाना है, उपशम श्रेणी में जाना है या क्षपक श्रेणी में? जीव जिधर पुरुषार्थ करेगा, कषाय विजीव होने के लिए जितना आत्मबल रहेगा, आत्मबल साथ देगा, उस हिसाब से लाइट गई क्या? उस हिसाब से पुरुषार्थ के हिसाब से वह आगे बढ़ने वाला है। तो देखिए, आत्मा की स्थिरता का नाम चारित्र है। सम्यक दर्शन सत्य तत्व का विश्वास ही सम्यक दर्शन, उस ओर बढ़ने का संकल्प, उपादेय तत्व की ओर बढ़ने का संकल्प सम्यक ज्ञान है। और जैसे जैसे बढ़ने लगता है तो बाह्य परिग्रह त्यागे बिना तो बढ़ता नहीं है। वो पहला तो 10 परिग्रहों का त्याग करना ही पड़ेगा। इनका त्याग करना किस उद्देश्य होना, तो रत्नकण श्रावकाचार्य ग्रंथ में समंतभद्र स्वामी ने कहा है, राग द्वेष निवृत्त्यै चरणम प्रतिपद्यते साधु। बाह्य चारित्र जो ग्रहण किया जा रहा है, ये भाव चारित्र को प्रकट करने के उद्देश्य किया जा रहा है। और भाव चारित्र की उत्पत्ति राग द्वेष से निवृत्त हुए बिना भाव चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। तो बाह्य चारित्र क्या कहलाया? पंच महाव्रतों को धारण किया। बाह्य चारित्र तीन प्रकार, बाह्य चारित्र 13 प्रकार का, पांच महाव्रत, और इनकी रक्षा के लिए, पांच महाव्रतों की रक्षा के लिए पांच समितियां और तीन गुप्तियां। इनका बाह्य रूप से पालन करने के साथ साथ अभ्यंतर में यदि राग द्वेष की निवृत्ति हो गई है, कौन सा राग द्वेष? सर्वघाती रूप राग द्वेष। कैसा सर्वघाती? अनंतानुबंधी राग द्वेष, अप्रत्याख्यानावरणी राग द्वेष और प्रत्याख्यानावरणी राग द्वेष, ये राग द्वेष सर्वघाती रूप है। इस पर अगर वह विजेता होता है और बाह्य चारित्र को इसी को जीतने के लिए, राग इन तीन प्रकार के राग द्वेषों को जीतने के उद्देश्य से चारित्र का ग्रहण होता है, तो फिर भाव चारित्र भी प्रकट होता है उसके साथ। अन्यथा इन 13 प्रकार का चारित्र पालन करना एक कामना के साथ भी हो सकता है। कामना कैसी? छोटी मोटी कामनाएं, अटक जाता है आत्मा छोटी मोटी कामना में। जैसे धर्म करना है लेकिन उसके लिए नाम होना चाहिए, नाम हो तो काम करूँगा, नाम नहीं होता है तो काम क्यों करूँगा? तो ख्याति, लाभ, पूजा आदि के परिणाम कमजोर जीव के पास उत्पन्न हो सकते हैं। तो वहाँ बहिरंग चारित्र तो आ जाएगा, परंतु भाव चारित्र की उत्पत्ति वहाँ नहीं होगी। और ये ख्याति, लाभ आदि, पूजा आदि के प्रति जो परिणाम जीव में उत्पन्न होते हैं, ये परिणाम कमजोर जीव के लिए ही उत्पन्न होते हैं। जो अंतरंग दृष्टि नहीं रहती, अंतरात्मा नहीं रहता, अंतरंग कषायों का विजेता होकर के मुझे परमात्मा बनना है, ऐसे लक्ष्य में कोई कमजोरी रह गई, ध्येय में कोई कमजोरी है, तो आत्मकल्याण के रास्ते पर वो जा ही नहीं सकता। तो क्या होगा? इन बहिरंग चारित्रों को लेकर के, इससे क्योंकि पंच पाप से बच रहा है इसलिए पुण्य बंध भी होगा, और अंतरंग में क्योंकि इस सब को लौकिकता के लिए उपयोग कर रहा है, ये महाव्रत, ये दिगंबर वेश आदि लौकिकता के लिए उपयोग कर रहा है, इसलिए गुणस्थान वहाँ कौन सा रहेगा देख सकते हैं। पहला रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमारा लक्ष्य मोक्ष का नहीं है तो किसका है? संसार का। तो संसार मार्गी है तो संसार मार्गी कौन है? बहिरात्मा है या अंतरात्मा है कि परमात्मा? तीन में से बहिरात्मा। तो बहिर्दृष्टि हो बहिरात्मा, अंतर्दृष्टि हो अंतरात्मा। अंतर्दृष्टि वाला कौन? जिनका मोक्ष प्राप्त करना, कर्म निर्जरा करना, संवर करना, राग द्वेष आदि को जीतना, यही परम लक्ष्य बना है और उसके लिए ही बहिरंग ये 13 प्रकार के अनुष्ठान चल रहे हैं। तो वहाँ चारित्र की उत्पत्ति हो सकती है, अन्यथा चारित्र बहिरंग रहेगा, अंतरंग चारित्र नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से जो अंतरंग चारित्र को ग्रहण करके वह क्षायोपशमिक चारित्र वाला बन गया, उनका गुणस्थान छठा सप्तम गुणस्थान हो गया, तो स्थिरता तो आ गई। कैसी स्थिरता आ गई? गुणस्थानों को जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जाएंगे आत्मा की स्थिरता बढ़ती जाती है। गुणस्थान की ये सारी सीढ़ियाँ आत्मस्थिरता को प्राप्त करने के लिए ही हैं। एक भी गुणस्थान चढ़ गए तो आपको अपने आत्मा में स्थिरता आ चुकी है। जैसे आत्मा की स्थिरता का बेस है सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। जिनेंद्र भगवान की वाणी के अनुसार जो आत्मा का ज्ञान होता है, उस श्रद्धापूर्वक हेयोपादे के विवेकपूर्वक जो ज्ञान प्रकट होता है वो सम्यक ज्ञान है। तो सम्यक दर्शन के बेस पर चारित्र प्रारंभ होना है। तो चौथे गुणस्थान में चारित्र तो प्रकट हुआ है, चारित्र तो प्राप्त हो चुका है, आत्मा की स्थिरता आई क्या नहीं आई? तो कहना चाहिए गुणस्थान अगर आगे बढ़ रहा है तो आत्मा की स्थिरता तो आ चुकी है। मिथ्यात्व में रहना ये और भी चंचलता है आत्मा की, और सम्यक्त्व के साथ रहना ये आत्मा की स्थिरता है। चारित्र रूप स्थिरता यहाँ नहीं है, परंतु मिथ्यात्व का त्याग और सम्यक्त्व का ग्रहण ये क्या हमारी आत्मा को अंतरात्मा नहीं बनाता? बनाता। बहिरात्मा को बहिरात्मपने को त्याग कर अंतरात्मपने को ग्रहण करना ये आत्मा की स्थिरता है क्या? नहीं, ये प्रथम स्थिरता है, प्रथम सीढ़ी है ये। हाँ, उन्नति तो हो गई, उन्नति की प्रथम सीढ़ी पर तो आ चुका है, अब चारित्र की ओर बढ़ना है। चारित्र से जो स्थिरता आती है वो चौथे के बाद देखो, पांचवे, छठे, सप्तम, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां, बारहवां, तेरहवां, चौदहवां, कितने गुणस्थान? 10 गुणस्थान हो गए। 10 गुणस्थान तक आत्मा की स्थिरता बढ़ती जाती है। तो यह मार्ग रूप जो चारित्र है, स्थिरता रूप, ये मंजिल में तो रहेगा नहीं, क्या रहेगा? नहीं रहेगा। और चारित्र आत्मा का स्वभाव रूप चारित्र जो होता है, वो मार्ग रूप जो चारित्र है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि गुणस्थान आत्मा का स्वभाव नहीं, मार्गणास्थान आत्मा का स्वभाव नहीं। मार्गणास्थान, गुणस्थान, ये सभी आत्मा के स्वभाव नहीं होते। तो इसमें कौन सा चारित्र रहता है? आत्मा के स्वभाव रूप चारित्र को उपलब्ध करने के लिए मार्ग रूप चारित्र को अपन अपनाते हैं। तो 13वें गुणस्थान में जाने के बाद सम्यक दर्शन क्षायिक है, वो पूर्ण है। सम्यक ज्ञान भी क्षायिक सम्यक ज्ञान हो चुका है, वह भी पूर्ण है। चारित्र पूर्ण है क्या? तो कहते हैं चारित्र अभी पूर्ण नहीं है। किस परमेष्टि को?
क्षायिक चारित्र तो है ना,
क्षायिक चारित्र है पर अपूर्ण है। क्षायिक चारित्र है वहां पर अपूर्ण है। क्षायिक चारित्र किस रूप है? यथा क्या चारित्र रूप क्षायिक है, वहां क्षौपशमिक रूप भी नहीं है। हाँ, क्षौपशमिक भी नहीं है, और जो चारित्र के कितने सारे भेद बताए, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, ये कोई भी नहीं है वहाँ 12वें गुणस्थान में, 13वें गुणस्थान में। तो केवल एक यथा क्या चारित्र है, यथा क्या चारित्र में भी जो 12वें गुणस्थान में यथा क्या था या 11वें गुणस्थान में यथा क्या था वो भी नहीं है। इससे ये पता चलता है क्षायिक चारित्र में भी वो क्षायिक कहने के लिए क्षायिक है इस अपेक्षा से है, मोहिनी कर्म का संपूर्ण क्षय होने से उसको क्षायिक संज्ञा है, और क्षय ना हो तब कितनी संज्ञाएं हैं देखो सामायिक, ये भी क्षय वाला नहीं, छेदोपस्थापना ये भी क्षय वाला नहीं, परिहार विशुद्धि ये भी क्षय वाला नहीं, सूक्ष्म सांप्राय ये भी क्षय वाला नहीं है। तो वस्तुतः क्षायिक चारित्र की उपलब्धि किस गुणस्थान में होगी, 12वें में। हाँ 11वें में जाएंगे तो सभी सत्ता रहेगी, क्षायिक चारित्र नहीं कहलाएगा, सत्ता में सभी दबा करके हम 11वें तक पहुंच सकते हैं, इस चारित्र को क्षायिक नहीं कहेंगे, औपशमिक चारित्र। और क्षायिक चारित्र किसको कहेंगे, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र को भी त्याग कर, उस गुणस्थान को त्याग कर 12वें में पहुंच जाए। तो वस्तुतः क्षायिक चारित्र की प्राप्ति 12वें में ही होती है, परंतु क्षायिक परिणाम होने के कारण 8वें गुणस्थान में औपशमिक परिणाम नहीं है, क्षायिक परिणाम है, यानी क्षय करने योग्य परिणामों की उत्पत्ति वहां हो चुकी है, अधःकरण अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण के माध्यम से क्षायिक परिणामों की उपलब्धि हो चुकी है। तो इन क्षायिक परिणामों के माध्यम से वह उपशमन नहीं करता मोहिनी कर्म को, क्षय करता जाता है, जितने गुणस्थान चढ़े आगे बढ़ता है, पीछे एक कदम भी नहीं हटता। तो जिस गुणस्थान में जिस मोहिनी कर्म का क्षय होना चाहिए, जिस स्थान पर क्षय होना चाहिए, उसी स्थान पर क्षय अवश्य होता है। इस प्रकार क्षय करता हुआ वह 10वें में पहुंचता है, 10वें गुणस्थान में भी उसको यथाख्यात संज्ञा नहीं है, क्षायिक संज्ञा भी यदि है तो क्षपना करने के परिणाम विद्यमान होने से उसको क्षायिक कहा है, परंतु ये कृतकृत्य नहीं है, यानी अभी काम पूरा नहीं हुआ है, क्षपना करने का कार्य पूरा नहीं हुआ है, क्षपना का कार्य पूर्ण करने के लिए 10वें गुणस्थान से भी परे उठना पड़ेगा। 12वें गुणस्थान में एक भी प्रकृति मोहिनी कर्म की न तो सत्ता में है न उदय में है, संपूर्ण क्षय हो चुका है। तो पूर्णतः 100% क्षायिक चारित्र की उपलब्धि 12वें में होती है, तो ये ध्यान में रखना है। तो आत्मा की स्थिरता बढ़ती तो जा रही है, जब मोहिनी कर्म का उदय था क्षायिक परिणाम थे, 8वें में थे, 9वें में थे, 10वें में थे, आत्मा की स्थिरता क्षय करते हुए जाने से बढ़ती जा रही है कि नहीं, परंतु ये भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि ये मार्ग रूप है, मार्ग रूप है, मंजिल रूप जो चारित्र होता है वहाँ पर आत्मा की स्थिरता पूर्णतः आ जाती है। 13वें गुणस्थान में 3 योग हैं, मनोयोग, द्रव्य मनोयोग, वचन योग, काय योग, ये तीनों हैं। ये तीनों योग चारित्र की कमी हैं या चारित्र की परिपूर्णता है, कमी है। तो 18,000 जो शील बताए गए हैं चारित्र के, वो 13वें गुणस्थान में 18,000 सभी शील पूर्ण नहीं हैं। तो जिनके पास अभी शील नहीं है, कुशील है, कुशील कहाँ तक है देखो 13वें गुणस्थान तक कुशील है, 13वें गुणस्थान तक कुशील विद्यमान है, क्योंकि योग की प्रवृत्ति यह सुशील नहीं है, ये कुशील है। इसको कुशील समझ करके उनको योग का भी निरोध करना पड़ता है, तब कहीं जा करके चारित्र की पूर्णता 14 में जा करके होती है। तो मन वचन काय का निरोध हो जाने पर 18,000 जो शील थे उसमें जो कमी थी वो कमी निकल जाती है। तो 12वें गुणस्थान में जाकर के चारित्र की पूर्णता हो जाती है। तो यहाँ अपन कह सकते हैं सम्यक दर्शन भी पूर्ण है, ज्ञान भी पूर्ण है और चारित्र भी पूर्ण है। तो यदि पूर्ण है तो क्या आत्मा का स्वभाव यहाँ पर है, स्वभाव रूप चारित्र है? तो कहें यहाँ भी नहीं है, क्योंकि गुणस्थान मात्र आत्मा का स्वभाव नहीं है। यदि स्वभाव कहेंगे तो 14 गुणस्थान में भी सिद्धत्व की अनुभूति होने का प्रसंग आएगा।
लेकिन केवल ज्ञान स्वभाव बताया ना, केवल ज्ञान स्वभाव बताया,
केवल ज्ञान स्वभाव
है, 13वें में है।
हाँ, 13वें गुणस्थान में जो ज्ञान है वो परिपूर्ण है, आत्मा का स्वभाव रूप ही है, विभाव की परिणति वहाँ है भी नहीं। पर जैसा ज्ञान पूर्ण है और सम्यक्तु भी वहाँ पर पूर्ण है, वैसा चारित्र पूर्ण है क्या? तो कहते चारित्र की परिपूर्णता अभी भी नहीं है। तो इससे ये पता चलता है चारित्र की पूर्णता के लिए हमें सर्वप्रथम सम्यक्तु को पूर्ण करना पड़ेगा। सम्यक्तु वो औपशमिक भी न रहे, क्षायोपशमिक भी न रहे, वो क्षायिक बन जाए। और इसको क्षायिक बने बिना चारित्र को क्षायिक नहीं बना सकते, और क्षायिक चारित्र को क्षायिक बनाए बिना ज्ञान को क्षायिक नहीं बना सकते, और ये तीनों क्षायिक बने बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मूल में क्षायिक किसको बनाए? सर्वप्रथम सम्यक दर्शन को क्षायिक बनाए। सम्यक तो अगर क्षायिक हो गया, अब क्षपक श्रेणी चढ़ने के लिए आपको परमिशन मिल गया, क्षपक श्रेणी का द्वार खुलेगा, आपको वहाँ बताना पड़ेगा मेरे पास क्षायिक सम्यक्तों का पासपोर्ट है, हमको पास कर दो, यहाँ पर पोर्ट है, हम पोर्ट है, कोर्ट में जाने की मुझे जरूरत नहीं है। बिल्कुल प्रामाणिक अपने पास क्षायिक सम्यक तो रहेगा तो हम 8वें गुणस्थान के क्षपक श्रेणी का द्वार खटखटा सकते हैं, उसके बिना क्षपक श्रेणी चढ़ नहीं सकते। हाँ, क्षायिक सम्यक दृष्टि दोनों श्रेणी चढ़ सकता है चाहे तो, परंतु क्षपक श्रेणी चढ़ने के लिए तो क्षायिक सम्यक तो ही होना, क्षायोपशम सम्यक तो के साथ क्षपक श्रेणी चढ़ नहीं सकता। ये बात हो गई। अब इससे पता चलता है कि चारित्र को क्या बनाने के लिए, क्षायिक बनाने के लिए सम्यक दर्शन की आवश्यकता है। तो ये भी क्षायिक हो गया और ये भी क्षायिक हो गया, इन दोनों को साथ ले चलना है। क्या उद्देश्य बनाकर? ज्ञान को क्षायिक बनाना है। इसलिए तो क्षायिक सम्यक दर्शन तो 4थे में भी प्राप्त हो सकता है, गृहस्थ को भी। ये कितना सस्ता है देखो, सबसे सस्ता रत्न त्रय में से कोई रत्न सस्ता है तो सम्यक दर्शन है। नरक में भी हो रहा है, त्रिरंच गति में भी हो रहा है, और मनुष्य गति में भी हो रहा है, देव गति में सब जगह कुबोक भूमि में भी हो रहा है। नहीं होता है तो केवल म्लेच्छ खंडों को माइनस कर दो, 850 म्लेच्छ खंड ढाई द्वीप में हैं, इनको माइनस करके सब जगह हो रहा है। भोग भूमि में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, कुबोक भूमि में भी प्राप्त कर सकता है, भवनत्रिक में कर सकता है देवगति में, और नरक में सातों नरकों में प्राप्त कर सकता है। त्रिरंच गति में संघी पंचेंद्री त्रिरंच जो भोग भूमि में नहीं है, कर्म भूमि में है, वो प्राप्त कर सकते हैं। भोग भूमि में त्रिरंच सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता, भोग भूमि के मनुष्य और नहीं नहीं म्लेच्छखंड के मनुष्य और म्लेच्छखंड के त्रिरंच एक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। भोगभूमि कुभोगभूमि के त्रिरंच भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो कितना सस्ता हो गया, ये सब जगह वो प्राप्त हो रहा है। और सम्यक दर्शन प्राप्त होता है जिनेन्द्र भगवान के वचन पर पूरा विश्वास, और ये विश्वास चारों गति में करते हैं। तो चारों गति के जीवों को देखिए, विश्वास करने के लिए एकमेव शरण जिनेन्द्र भगवान की वाणी, और उस वाणी का श्रद्धान जो जीव करता है उसको जैन धर्म की उपलब्धि होती है। तो जैन धर्म कहाँ कहाँ है? चारों गति में। ये मत समझो कि यहीं पर है और भारत में ही है, इसको इसकी कोई डायरी नहीं है, परिधि नहीं है। शायिक सम्यक दर्शन विशुद्धि की अपेक्षा से अंतर है। चौथे गुणस्थान में जो विशुद्धि है क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ, वो बहुत जघन्य है, विशुद्धि भी बढ़ती जाती है, तो बहुत अंतर है। क्षायिक भले ही हो, क्षायिक इस अपेक्षा से कि अनंत अनुबंधी और दर्शन मोहनी की तीन प्रकृतियों की केवल क्षपना होने से वो क्षायिक संज्ञा प्राप्त हो गई है, परंतु चारित्र उसके साथ जुड़ जाए और अन्य कर्मों का उपशमन क्षय होता जाए तो उसमें भी विशुद्धि बढ़ती जाती है। सम्यक दर्शन वंदनीय और पूजनीय है, सम्यक ज्ञान भी वंदनीय और पूजनीय है, किंतु जब तक जीवन में संयम नहीं आता, क्षायिक सम्यक दृष्टि भले ही हो, जीव चौथे गुणस्थान में हो, पर क्या वह क्षायिक होने से वंदनीय पूजनीय है? नहीं है। किस कारण से? संयम न होने से। इसलिए आगम के ग्रंथों में लिखा है असंजदम न वंदे, असंयमी जीव सम्यक दृष्टि भी हो तो वंदनी पूजनी नहीं रहते। ये जैन धर्म का मूलभूत विषय, मूलभूत सिद्धांत जिसको पता नहीं है वो इसी में भटकता रहता है कि क्यों नहीं पूजा करना चाहिए, सम्यक दृष्टि हैं देवता लोग, क्यों नहीं पूजा करना चाहिए, सम्यक दृष्टि कोई राजा तो करो ना। नियम से सम्यक दृष्टि रहते हैं तीर्थंकर भगवान जन्म के साथ, तो राजा तीर्थंकर का, राजकुमार तीर्थंकर का बाल्यावस्था में रहने वाले तीर्थंकरों के पास तीन ज्ञान और सम्यक दर्शन नियम से रहते, तो क्या वंदनी पूजनी है? तीर्थंकर स्वयं कहते हैं चाहे मैं हूं चाहे कोई जीव हो, असंयम दशा में जीव वंदनी नहीं होता, असंजदम न वंदे। ये सूत्र लिख करके रखो और ये समझाओ, अज्ञानता को दूर करो, असंयमी जीव वंदनी नहीं होता। कितनी बड़ी बात है, मूलभूत सिद्धांत है, ये फाउंडेशन है। असंयमी जीव सम्यक दृष्टि हो तो भी वंदनी नहीं है। यदि वंदनी कहेंगे तो नमोकार मंत्र में सभी आना चाहिए, नमो लोए सवो साहु नम के बाद फिर जो साधक हैं लाइन लगा करके खड़े हैं, उस मुनि के पीछे आरिका है, आरिका के पीछे ऐलक है, ऐलक के पीछे छुल्लक है, इनका भी उच्चारण नमोकार मंत्र में होना चाहिए। नमो आरिकानम एक पद और जोड़ दो, नमो ऐलकानम उसके पीछे वाले को भी जोड़ दो, नमो छुल्लकानम, नमो नवी प्रतिमानम, ग्यारहवीं प्रतिमानम इन सबको जोड़ते जाओ। कुंद स्वामी ने दर्शन पाउड़ में, सूत्र पाउड़ आदि ग्रंथों में स्पष्ट कहा है, वस्त्र आवरण से सहित और सम्यक्तु से युक्त जो जीव होते हैं वो इच्छाकार के योग्य हैं, वंदनी पूजनी नहीं हैं, क्योंकि जहाँ बहिरंग परिग्रह वस्त्र साक्षात विद्यमान है वहाँ पर नियम से असंयम विद्यमान होता ही है, और जहाँ वस्त्र आदि परिधान नहीं है, आवरण नहीं है, ऐसा दिगंबर अवस्था भी है और द्रव्य व्रतों को धारण करने वाले दिगंबर वेशधारी मुनि भी हैं, द्रव्यव्रती मुनि, उसी को द्रव्यव्रतों को ही द्रव्यलिंगी कहा है। द्रव्यलिंग यानी पहचान, क्या पहचान? व्रतों की पहचान। पंच महाव्रत पांच समिति का पालन करते हैं, तीन गुप्ती का पालन करते हैं, तो बाह्य रूप पालन करते हैं, यानी अंतरंग में जो भाव चारित्र के घातक कषाय तीन हैं उनका अभाव नहीं हुआ है, तो उनको भी क्या कहा आगम में? उनको भी ये कहा वो भी वंदनीय नहीं है, क्योंकि उनका अंतरंग असंयम स्थान पर है, उनकी आत्मा के परिणाम किस स्थान पर है? असयम के स्थान पर, यानी असयम भाव, असयम को धारण करने वाले निर्ग्रंथ मुनि के, निर्ग्रंथ यानी बाह्य निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मुनि के कितने गुण स्थान बनते हैं देख लो, कितने? पांच बनते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवा क्यों? क्योंकि प्रत्याख्याना वर्णी कषाय के उदय के बिना पांचवें गुणस्थान में आना संभव नहीं। अप्रत्याख्यान कषाय के उदय के बिना चौथे गुणस्थान में आना संभव नहीं। अनंतानुबंधी के उदय के बिना पहले दूसरे में आना संभव नहीं। तो किसी भी गुणस्थान में अगर यहाँ है पांच में से, तो ऐसे बाह्य निर्ग्रंथ मुनि की भी वंदना न करने का आगम में उल्लेख है। क्यों है? क्योंकि वो भी नमोकार मंत्र में न होने से, तो बाह्य निर्ग्रंथ भी नमोकार मंत्र में होते नहीं, यही तो हमको पता नहीं रहता है। और नहीं रहता है इसलिए पिछी कमंडलु धारी मुनिवर नमन सदा हम करते हैं। अर्घ्य चढ़ाते समय एक श्लोक बोलते हैं, उसमें हमने सुधार करवाया। उसमें क्या बोलना चाहिए? पिंछी कमंडल तो जी को बाह्य निर्ग्रंथ के पास भी है और दिगंबर वेश भी उपलब्ध है। क्या पिछी कमंडल और बाह्य वेश ही वंदनीय है? क्या कहता है जिनागम? रत्नत्रय धारी मुनिवर तुमको नमन सदा हम करते हैं। रत्नत्रय को जोड़ो ना वहां, पिछी कमंडल को क्यों जोड़ रहे हैं? ऐसा याद हो जाएगा तो आदत पड़ जाएगी। ये तो जिनवाणी तो लिखा, जिनवाणी में तो लिखा है, श्लोक में तो हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीछे कमंडल उधार, वही वही घूमेगा दिमाग में, हैमरिंग हो जाएगा, वही वही घूमेगा। और जो घूम रहा है उसको जिनवाणी समझेंगे? पूजन पुस्तक को ही जिनवाणी समझ लेते लोग, इतना भी विवेक नहीं है, विवेक नहीं है। और लोग मतलब लिखने वाला भावों में लिखा है, भक्ति से लिखा है, कोई बात नहीं, परंतु उसके साथ अर्थ भी तो समझना जरूरी है ना। आगम के अनुसार यदि कोई पद्य बनता है तो वो आगम जरूर है, चाहे वो जिनवाणी पूजन पुस्तक में, जिनवाणी को पूजन पुस्तक ही नाम है, पूजन के पोथी को जिनवाणी कहते लोग, लेकिन वो जिनवाणी है क्या? नहीं, जनवाणी है। पूजन किसी जिनेन्द्र भगवान ने बना के तो बताया नहीं, किसी आचार्य ने भी अष्टक वगैरह नहीं लिखा, लिखा है क्या? फिर पूजन पुस्तकों को जिनवाणी क्यों कहते हैं?
वो वर्तमान में नहीं आ सकते, वर्तमान योग में नहीं आ सकते।
पूजन पुस्तक तो क्रियाकांड वाली पुस्तकें हैं, जो हमारे भावों को रमाने के लिए भक्ति भाव से हम स्वयं रचना करते हैं। भक्त जब भक्ति करने के लिए पहुँचता है तो कुछ चरणों में पुष्प चढ़ाता है, जब भाव पुष्प चढ़ाएगा, भाव पूजन के पुष्प चढ़ाएगा, तो पद्य बना करके चढ़ाएगा, ये पद्य संकलित हो जाते हैं तो पूजन पुस्तक बन जाती है। हाँ, कवियों के द्वारा रचित, कवि लिखता है, कवि हो या ना हो आप भी लिख सकते हैं, कवि ना होने पर भी आप भावुकता में कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आगम के अनुसार अगर वो पद्य बन गया तब तो वो जिनवाणी की कोटि में आएगा, और आगम से बाधा आने लग जाए तो जनवाणी की कोटि में आएगा। वो जनवाणी यानी आपकी वाणी, आपने लिखा, आगम से विहित अर्थ उसमें नहीं है, तो जनवाणी के कोटि में रखो, उसको जिनवाणी मत कहो।
स्वयंभू स्तोत्र आगम में आएगा?
हाँ, स्वयंभू स्तोत्र आचार्यों ने लिखा है, समंतभद्र आचार्य की कृति है वो, तो उसमें कोई आगम से विरुद्ध वाली बात कभी आती नहीं है। जिनेन्द्र भगवान ने जैसे सिद्धांत तत्व का प्रतिपादन किया है, उसको सुरक्षित रखते हुए भक्ति किया है, तो आचार्य प्रणीत ग्रंथों, स्तोत्र या स्तुति आदि में कोई भी आगमिक बाधा नहीं आती, तो वो पढ़ सकते, और पूजन भी पढ़ना चाहिए, ऐसी बात नहीं। आपका पूजन लिखा हुआ आगम के अनुरूप हो, वो जिनेन्द्र भगवान की ही वाणी है। अब आपने पीछे कमंडलधारी लिख दिया तो एक देश घटित होता है वो, जहाँ भावलिंग रहेगा वहाँ तो पीछे कमंडलू और निर्ग्रंथ वेश तो नियम से ही रहेगा और द्रव्य व्रत नियम से रहेंगे 13 प्रकार के चारित्र। परंतु जहाँ द्रव्य व्रत है, निर्ग्रंथ वेश है और पिंची कमंडलू है, दिगंबर वेश है, द्रव्य व्रत भी है और पिंची कमंडलू भी है, भावव्रत व्रत भी उसके साथ नियम से होगा, ऐसा नियम बनेगा क्या, सिद्धांत बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो इसलिए सूत्र में ऐसा कुछ मेल नहीं बैठ रहा है लिखे हुए पद्य में, तो तुरंत सुधारना चाहिए, सुधार के बोलना चाहिए। एक आरती और बोलते हैं पंच परमिष्टियों की आरती, उसमें छठे सप्तम गुणस्थान वर्ती की भी आरती की गई है। हाँ, प्रतिमाधारी की आरती की गई है, तो उचित है क्या? तो तुरंत चेंज करना चाहिए, उसमें क्या लिख देना चाहिए, सिद्ध क्षेत्रों की आरती लिखो या और कुछ लिखो, लेकिन जो वंदनी पूजनी के स्थान पर है उसका नामकरण वहां आ जाना चाहिए। ये प्योर फिल्टर दिगंबर जैन धर्म है फिल्टर्ड। तो प्रश्न क्या था?
रत्नत्रय जीव का स्वभाव है क्या?
रत्नत्रय आत्मा का स्वभाव अवश्य है, पर सिद्ध अवस्था में जो रत्नत्रय है, संपूर्ण आत्मा की स्थिरता और केवल ज्ञान और क्षायिक सम्यक दर्शन जो रहेगा वो मंजिल में भी रहेगा और मार्ग में भी है। मार्ग में रहने वाला रत्नत्रय आत्मा का स्वभाव नहीं, मंजिल में रहने वाला रत्नत्रय आत्मा का स्वभाव है, ऐसा जानना चाहिए।
केवल दर्शन स्वभाव है, लेकिन
केवल ज्ञान भी आत्मा का स्वभाव है।
नियम और नियोग में क्या फर्क है?
किंतु मार्ग रूप केवल ज्ञान भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, सिद्ध अवस्था का केवल ज्ञान ही आत्मा का स्वभाव है। हाँ, क्या ज्ञान गुण? केवल ज्ञान गुण तो है ही, स्वभाव रूप है, परंतु ज्ञान गुण की पर्याय के साथ आत्मा की स्थिरता न होने से वह ज्ञान भी, ज्ञान में भी कमी है। वही ज्ञान गुण 18 शीलों को पूर्ण करेगा, इसलिए ज्ञान में, सम्यक्तों में, सब में स्वभावपना नहीं है। यदि हम स्वभावपना कहेंगे तो फिर सिद्धों के केवल ज्ञान में और अरहंतों के केवल ज्ञान में क्या अंतर रहेगा? नहीं, यहाँ पर आत्मा की स्थिरता की अपूर्णता है, केवल ज्ञानोपभोग योग है, फिर भी 18,000 सील पूर्ण नहीं है, चारित्र की कमी है। तो जिस ज्ञान के साथ चारित्र की कमी हो वहाँ पर आत्मा का स्वभाव कैसे प्रकट होगा? तो 13वें गुणस्थान वाले केवल ज्ञान को आत्मा का स्वभाव नहीं समझना है, मार्ग रूप है वो, केवल ज्ञान भी मार्ग स्वरूप ही है 13वें गुणस्थान में।
अगला एक प्रश्न है महाराज जी, नियम और नियोग में क्या अंतर?
नियम और
नियोग,
योग
नियोग, नियोग
नियोग
नियोग और नियम,
नियोग और नियम में क्या अंतर है,
क्या फर्क है?
नियोग यानी ऐसा कोई संबंध जिसको हम नियोग कहते हैं, ये नियोग से ये कार्य हो गया, यानी ऑटोमेटिक हो गया, ऐसा होना था इस नियोग से ये हुआ, निमित्त से, नियोग यानी निमित्त, जो निमित्त स्वाभाविक रूप से होता है उसको नियोग कहते हैं, जो निमित्त मिलना है और कार्य घटित होना है स्वाभाविक रूप से होना हो तो उसको नियोग कहते हैं, ऐसा ही इसका नियोग था ऐसा। और निमित्त
तीर्थंकर 24 ही होंगे ऐसे,
हाँ
ये सब नियोग में आएगा।
हाँ, निमित्त यानी निमित्त, सामान्य निमित्त, निमित्त से ही नियोग बनता है, कोई निमित्त है और उसी निमित्त को लेकर स्वाभाविक रूप से कोई जो काम होता है उसको नियोग बोलते हैं, निमित्त के बिना नियोग नहीं होता, निमित्त पूर्वक जो नियोग होता है उसमें स्वाभाविकता होती है।
और नियम में
नियम या निमित्त,
नियम ये नियोग हो गया और नियम
निमित्त भी हो गया। नियम का मतलब जो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ के अनुसार जो अल्प समय के लिए जिसको हम संकल्प ले लेते हैं त्याग का या कुछ किसी का, उसको नियम कहते हैं। नियम का अर्थ निश्चय भी होता है, अनेक अर्थ हैं उसके। पर रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अनुसार श्रावक के जो व्रतादि के स्वरूप समझाया है वो नियम पूर्वक भी होते हैं और यम पूर्वक भी होते हैं। यम में और नियम में ये फर्क है। यम आजीवन पर्यंत के लिए जिस वस्तु को हम त्याग करते हैं वो यम की कोटि में आता है, और नियम जो समय मर्यादा से हम छोड़ते जाते हैं थोड़े थोड़े समय के लिए, वो नियम की कोटि में आता है। नियम यम की ओर बढ़ने का साधन है। नियम का अर्थ कानून भी है, नियम का अर्थ विधि भी है, विधि को भी नियम कहते हैं, वो जनरल अर्थ अलग है। तो इस अपेक्षा से ही प्रश्न यदि हो तो नियम का अर्थ विधि, नियम का अर्थ नियोग भी होता है।
नियम का अर्थ नियोग भी,
हाँ
यही जमलिंग हो रहा है।
इस नियोग से हमारा कार्य हो गया, यानी इस निमित्त से कार्य हो गया, इस विधि से कार्य हो गया, इस पूर्वक हमारा कार्य सिद्ध हुआ। तो ये जनरल अर्थ है। आगमिक अर्थ जो दिए हैं व्रतादि के संबंध में, वहां पर जो समयावधि से
इसी काल मर्यादा के,
काल मर्यादा से जिस वस्तु का हम त्याग करते हैं वो नियम के कोटि में आता है, और आजीवन कर रहे हो तो यम के कोटि में आता है। यम, उसको यम क्यों कहा? तो यम आने तक हम नहीं छोड़ते यम भी आ जाए तो हम नहीं छोड़ेंगे। यम आने पर स्थिर रहेंगे अपने में, अपने व्रतों में स्थिर रहेंगे। यम आकर के हमको ये जो व्रत आदि हैं, यम पूर्वक यम वाले व्रत हैं, इसके साथ हमको ले जाए ये भावना के साथ, पर व्रत नहीं आते। मनुष्य आयु समाप्त होने के बाद जब यम हमको ले जाता है, यानी मृत्यु, यम यानी यहाँ मृत्यु, यमराज आने पर हम जो उनके साथ चलते हैं उस समय व्रती नहीं रहते हम, उस समय अव्रति होते हैं। क्योंकि मनुष्यायु की समाप्ति के साथ होते, मनुष्यायु समाप्त होते ही देवायु का उदय होता है, और देवायु के उदय के साथ ही आत्मा, संयमी आत्मा असंयमी बन जाता है।
अभी का समय हो गया महाराज।
हाँ
जिन्होंने
समय हो गया एक ही क्वेश्चन में ठीक।
प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवासे कर्म हरो मां अब तक हम विषयांध रहे, अब हम न विषयांध रहे।